Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Dakshinamurti Stotram, presented by Swami Sri Atmananda Giriji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
और ये चार कील हैं वहां वो गीता मुझे श्लोक पूरी याद नहीं हो रही है न च माम यो अभ्यसूयति न च वाच्यम न च शुश्रू सवे वाच्यम न च माम यो अभ्यसूयति तो वो चार कीलक के बाद गीता पढ़ोगे तभी वह रहस्य प्रकट होगा तो श्रुति में कभी भी आलस्यता नहीं तीसरी बात ईश्वर अनुग्रहण भी ईश्वर का अनुग्रह होनी चाहिए और हम तो जो भी शुभ कर्म करते हैं जो भी सत्कर्म करते हैं नित्य निमित्त आदि कर्म करते हैं उसमें ईश्वर प्रसन्नता की बात ही नहीं आती है ईश्वर प्रसन्नता की बात नहीं आती है वहां पर भी वही विषय की ही कामना आती है विषय मन में विषय की ही भावना संसार और सांसारिक पदार्थों की ही चाहना होती है भगवान का दर्शन किया हे ईश्वर हे परमात्मा मने सुखी राख जो फलाने ने सुखी राख जो एम कर दो तेम कर जो ले जी ये संसार की है और तुम सुखी कैसे रहना चाहते हो कोई ये नहीं कहता कि तुम प्रसन्न हो जाओ मैं जो हूं जैसा हूं प्रसन्न हो जाओ ये नहीं कहता है तो ये जो ईश्वर श्रुति और आचार्य की कृपा जब होती है तब उस सोए हुए व्यक्ति को ये तीन मिलकर जगा देते और चौथी बात तो बता दिया योगाभ्यास ये चार व्यक्ति उठाते हो हमको एक आदमी से उठाने से नहीं उठने वाले हैं हम इतनी जबरे हैं मुर्दा तो नहीं उठता है हम जिंदे कैसे उठेंगे भाई मुर्दा उठता है एक आदमी से एक आदमी उठाने पर मुर्दा उठेगा मुर्दा तो नहीं उठता एक आदमी से हम जिंदे कैसे उठेंगे एक आदमी से हम इतनी जबरे हैं कि चार आदमी उठाना पड़ता है मुर्दे को भी चार आदमी उठाना पड़ता है तभी वो मुर्दा उठता है श्रुति आचार्य ईश्वर और योग अभ्यास तो हमने योग का कल संकेत किया ही था निधिध्यासन ही योग है निधिध्यासन एक चित्ता जो श्रवण किया हुआ है उसमें एक चित्तता ये अभ्यास यही योग है यहां राजयोग और वो तुम्हें उठाने में जगाने में समर्थ है तब तुम जगते हो तो तब क्या होता है जैसे खाने से पहले का भोजन सबको इदम 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 नाहम 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 है कटोरी के सब्जी को पूछो ये तुम हो तो तुम कहोगे स्पष्ट है कि नहीं ये तो सब्जी है हूं क्या छू हूं तो अहिया छू आ कटोरी में हूं क्या मैं तो ये कटोरी है सब्जी है मैं नहीं हूं रोटी को पूछो कि ये तुम हो तो बोले नहीं नहीं ये रोटी है मैं कहां हूं ये और जब खा लेता है तब क्या कहता है जो खाया उस रोटी को छोड़कर मैं ऐसा कोई नहीं कहता सबको लेकर मैं गया था मैं आया था मैं उठा मैं बैठा मैं सब कुछ कवलित हो जाने के बाद आत्मभाव को प्राप्त हो जाता है आत्मा भिन्न उसका अस्तित्व नहीं रहता इसी प्रकार से जगा हुआ व्यक्ति ये सारा का सारा प्रपंच इदम रूप में भाषित प्रपंच वह आत्मभाव को होता है वो कवलित हो जाता है इस बात को और आगे स्पष्ट करते हैं अब कोई प्रश्न करे कि आप इतने लंबे समय का ये स्वप्न कह रहे हो कैसे माना जाए ये स्वप्न बोले अरे भाई ये जो तुम्हारी दृष्टि से जो लंबा समय बता रहे हो ये समय तो कुछ भी नहीं है बाबा ये तो रात्रि के समय जिस समय तुम स्वप्न देखते हो उस समय के भी कम समय है ये, तुम्हारे 100 वर्ष का जो जीवन है समय है वो तो रात्रि का जो स्वप्न देख रहे हो वो स्वप्न के समय से भी कम समय है। दृष्टांत दे रहे हैं, बड़ा सुंदर ही मनन करने योग्य दृष्टांत है ये। दिन को दिवा स्वप्न सिद्ध करने के लिए रात्रि स्वप्न से ये भिन्न नहीं है ये निश्चय करने के लिए दृष्टांत दिया। पहले वही स्वप्न कहीं देख लो, यथा स्वप्ने निरपो भूतवा, कोई व्यक्ति था रात को जब सोया खाना पीना खाकर, तो उसके इंद्रियां सब उपराम को प्राप्त हो गई, विश्रांति को प्राप्त हो गई, उपरत हो गए, तब तुरंत उसके मन यानी अंतकरण अपना काम करने लग गया तो स्वप्न देखने लग गया। तो स्वप्न क्या देखता है, कहीं राजकुमारों का स्वयंवर का प्रसंग था। महात्मा लोग बहुत दृष्टांत देते हैं, कोई राजकुमारी थी उसका स्वयंवर का प्रसंग था। यह है कि राजकुमारी जिसके गले में माला पहना दे तो वह राजा बन जाएगा, उसका पति होगा और उसके बाद वो राजगद्दी का उत्तराधिकारी हो जाएगा। या दूसरी बात समझ लो कि शास्त्रों में ऐसा दृष्टांत है कई बार कि यदि कोई राजा के पुत्र आदि युवराज नहीं है तब उस राजा के उत्तराधिकारी का छनोट करना हो, चयन करना हो, तो एक हाथी को माला दी जाती थी और हाथी को कह दिया जाता था कि इस गद्दी के योग्य कोई उत्तराधिकारी खोज कर लाओ, तो वह हाथी जिसके गले में माला पहना देता था उसको उस राज्य का राजा माना जाता था। राजगद्दी खाली होने पर दूसरे राजा चयन के लिए प्रक्रिया थी। ऐसे कई उदाहरण आ गए हैं शास्त्रों में, हैं हमारे शास्त्रों में। रात्रि को वो स्वप्न देख रहा था, कौन, आत्मानंद गिरी, और संयोग से वह स्वप्न में उस राज्य में पैदा हुआ है वह आत्मानंद गिरी जहां सिंहासन खाली था और मंत्रियों ने निश्चय कर दिया कि उस राजा चयन करने के लिए हाथी को माला देकर भेज देना है और जिसके गले में माला पहना देगा हाथी वही राजा हो जाएगा। राजा होने की वासना तो आत्मानंद गिरी की भी थी। स्वप्न देख रहा था कि यदि मेरे गले में माला पहना देता हाथी तो क्या मजा आता है, मन में वही वासना लेकर स्वप्न देख रहा है। स्वप्न जैसे अभी आपके वासना है कि नहीं है, वासना है कि नहीं आपके मन में, यदि ऐसा हो जाता, यदि ऐसा हो जाता, ऐसे ऐसा हो जाता, है वासना है कि नहीं है। यदि आपने जहां जिस कंपनी का शेयर खरीदा है, यदि 1.4% डिविडेंड मिल जाए, एक शेयर का बराबर 4 शेयर आपको बोनस मिल जाए, इतना तो कोई कोई कंपनी नहीं देगा है ना, एक शेयर बराबर 4 शेयर बोनस तो आज तक कहीं दिया है किसी कंपनी ने, है दिया है, शाबाश, 10 तक दिया है बोनस, वेरी गुड। हम ही दुर्भाग्य हैं, एक भी शेयर नहीं खरीदे, देख लो प्रमाण है। अब भी आपके 100 शेयर थे, 1000 शेयर थे और एक के 10 कर दिया उसने, बोनस दिया, कितने हो गए 10,000, और एक शेयर बराबर 1 लाख का था। अरे कल्पना ही तो है क्या, क्यों दरिद्रता करना है, 100 में क्यों लाना है एक शेयर को, 1 लाख का था, करोड़ के हो गए कि नहीं अब मलिक, तो आपके मन में क्या होती है, यदि ऐसा हो जाए तो मैं नरीमठ पॉइंट में एक फ्लैट खरीद लिया 10 लाख में, एक करोड़ में क्या मिलने वाला नरीमन पॉइंट में फ्लैट, कल्पना तो है और क्या, सभी कितने कल्पना करते हैं। ओहो, मेरे मन में भी कभी कभी ऐसा होता था पहले, अभी भी होता है, कोई बढ़िया घर बन रहा हो कहीं फ्लैट, ओहो इसके टॉप फ्लोर में एक फ्लैट रखने है। लेकिन करे क्या, कल्पना करने से तो होने वाला नहीं था है? सभी की जीव का ये अवस्था है, जीव भाव का ये लक्षण है, ये कल्पना करता है। वो सोया हुआ था, स्वप्न देखा, और स्वप्न में वो तो स्वप्न में तो सोएगा नहीं, स्वप्न जो देख रहा है वह स्वप्न में सोएगा नहीं, सोएगा स्वप्न में तो जाग रहा था। तो वह हाथी जब राजमहल से माला लेकर निकला, मन में तो इच्छा हुई कि हाथी मेरे गले में माला पहना देवे, और हाथी जिस गली से निकल रहा था, जिस रास्ते से, तो आत्मानंद उसी में खड़ा होकर गर्दन लंबा कर रहा था। स्वप्न देख रहा है, गर्दन लंबा कर रहा था, तो उस हाथी ने डाल ही दिया माला, कि जन्म का प्रारब्ध था। स्वप्न में हाथी ने आपको राजा बनाने के लिए माला डाल दिया, वो किसी जन्म का प्रारब्ध था कि नहीं, बोलो है? ये प्रारब्ध प्रारब्ध कुछ नहीं था, ये वासना है। वो प्रारब्ध से कोई स्वप्न में कोई राजा नहीं बनता है। प्रारब्ध से राजा बनना तो ये जागृत में ही है, ये दिवा स्वप्न में है, रात्रि स्वप्न में नहीं। मैं जागृत शब्द नहीं प्रयोग करना चाहूंगा इस प्रसंग में, क्योंकि शंकराचार्य जी जो कह रहे हैं ये भी स्वप्न है, दीर्घ स्वप्न है, इसलिए दूसरी शब्द से मैंने कहा ये दिवा स्वप्न है। तो ये भले ही प्रारब्ध से ये प्राप्ति हो, यहां जो कुछ भी प्राप्त हो प्रारब्ध से, लेकिन आपके रात्रि स्वप्न में जो कुछ प्राप्त होगा वो आपके प्रारब्धों से प्राप्त नहीं होगा। फिर भी उस हाथी ने आपके गले में माला डाल दी, आपके साथ और भी तो थे वहां बहुत से स्वप्न में गर्दन लंबे करने वाले, तो आपके गर्दन में डाल दिया, तो राजा बन गया, सब ने घेर लिया, जय जयकार, मंत्री आ गए घेर गए, आत्मानंद जी महाराज की जय है, ले गए सिंहासन में रख लिया। अब वो तो सिंहासन में बैठा हुआ है, राजा बना हुआ है, शासन कर रहा है, सेना है, सब सेवक हैं, परिचारक हैं, जयकार हो रहा है। बहुत दिन हो गया, बहुत दिन, पूरे राजपाट भोग वैभव का अनुभव कर रहा है। कुछ दिन के बाद शत्रु राजा बलवान हो गया और उसने आक्रमण कर ली, तो युद्ध करने के लिए चला गया वो। यथा स्वप्ने निरपो भूत्वा, सुरेश्वराचार्य जी ने इस प्रसंग का संकेत कर दिया है, यथा स्वप्ने निरपो भूत्वा भोंगता भोगान यथेव सितान। अब उसको तो भोग की कोई कमी होगी राजा को, यथा इप्सितम भोगान भुंक्त्वा, भोगा खूब भोग रहा है, चतुरंग बलोपेतः शत्रुं जित्वा रणांगणे। उसको तो अब कोई परास्त करने वाला ही नहीं है, चतुरंग सेना है, जिधर जाता है उधर ही सेना का प्रभाव यह है कि वो जीत लेता है। परंतु एक बार की बात है कि वह परात पराजितो भूत्वा, युद्ध में दूसरे राजा ने उसको परास्त कर दिया, परास्त कर दिया तो राजसत्ता खत्म हो गई उसकी। वनम प्राप्य तपश्चरण, वो चला गया जंगल में तपस्या करने के लिए। अब क्या करेंगे, सत्यवान के माता पिता की कहानी महाभारत में सुने है ना, चले गए जंगल में, और सत्यवान उन्हीं को पालन पोषण के लिए क्या करता था, सत्यवान राजपुत्र था, राजकुमार था, और उनके माता पिता राजा थे, लेकिन प्रारब्ध की बात है, एक राज्य भ्रष्ट हो गया तो जंगल में चले गए। सत्यवान जंगल में जा रहा है अपने माता पिता की सेवा करने के लिए, लकड़ी काटता है, बेचता है, उससे जो पैसा प्राप्त होता है उसी से अपने माता पिता का भरण पोषण करता है, राजा का है। तो देख लो सत्यवान सावित्री का प्रसंग में ये आता है कि नहीं। तो पराजभूत अपराजितो भूत्वा वनम प्राप्य तपश्चरण मुहूर्त मात्रम आत्मानम। और ये स्वप्न कितना लंबा है, वो स्वप्न देखने वाला कितने समय में ये सारा स्वप्न देख रहा है, मुहूर्त मात्र, एक मुहूर्त के अंदर कत ये सब देख रहा है। राजा भी हो गया, राज वैभव की भोग रहा है, कई बार युद्ध किया, कई बार विजयश्री प्राप्त किया, और एक बार परास्त हो गया और जंगल में गया तपस्या करने लग गया। कितना समय उसके लिए, तो पूरी लाइफ है कि नहीं बोलो है। और वो जो स्वप्न क्या इतना दीर्घ समय, इतना लंबा समय तुम्हारे जागृत के अवस्था के हिसाब से करो तो कितना है, तो बोले एक मुहूर्त। जागृत के सामने वह एक मुहूर्त है। वो एक मुहूर्त का अर्थ बराबर आचार्यों ने 42 मिनट बराबर माना है। एक मुहूर्त बराबर 42 मिनट्स। इतने में हो गया वो 42 मिनट्स में क्या राजा बन सकता है कोई। मुहूर्त मात्रम आत्मानम मन्यते कल्पजीविना। वो स्वप्न दृष्टा क्या मानता है, कल्पजीविना। तथैव जागृत काले अपि, तुम्हें इस समय क्या लग रहा है, है? इतना लंबा कोई स्वप्न होता है, यही लग रहा है कि नहीं, इस समय यही तो लग रहा है। स्वप्न होता तो एक मुहूर्त का होता है, ये तो कितना हो गया, 80 वर्ष हो गया, 87 वर्ष के एक वृद्ध आए थे कल हमसे मिलने, और 87 वर्ष का कोई स्वप्न होता है, ये तो जागृत है। अरे बाबा, इस समय तुम्हारी जो 87 वर्ष क्या 100 वर्ष, इसी तरह की भ्रांति उस स्वप्न देखने वाले को भी हुई थी कि स्वप्न में वह अपने सेंचुरी मना रहा था। समझ गए कि नहीं। एक बच्चा सोया, 16-17 साल का युवा है, वो सोया और वो एक मुहूर्त के अंतर्गत स्वप्न क्या देख रहा है, मैंने शादी की, मेरा बच्चा हो गया, मैंने बिजनेस किया, घर है, दुकान है, मेरा बेटा बड़ा हो गया, उसकी शादी कर ली, बहू आ गई, उसके भी बच्चे हो गए, तो क्या हो गया, पोता हो गया कि नहीं। और ऐसा वो योग करता रहा कपाल भांति रामदेव जी का, क्या कपाल भांति करता रहा, उसके पोते का भी शादी हो गई, उसका प्रपोता भी हो गया, कपाल भांति का फल है वो। परिणाम क्या हुआ, परिणाम क्या हुआ, वो 100 वर्ष का हो गया, 100 वर्ष का हो गया, तो सब नाती पोते प्रपोते सब लोगों ने क्या किया कि पिताजी की सेंचुरी मनानी है, सेंचुरी की तैयारी हो गई है, शताब्दी मनाने की तैयारी हो गई। आप लोग तो षष्ठी पूर्ति में क्या फंक्शन करते हो, करते हो कि नहीं, 60 वर्ष के हो गए तो षष्ठी पूर्ति का फंक्शन करते हो कि नहीं आप लोग है, करते हैं। और 75 वर्ष के हो गए तो क्या करते हो, डायमंड सिल्वर के जुबली, डायमंड जुबली जुबली, और 100 वर्ष के हो गए तो गोल्डन, तो 50 में होता है भाई, प्लेटिनम जुबली, हाँ, क्या प्लेटिनम जुबली की तैयारी हो रही थी, शताब्दी समारोह भव्यता के साथ, और संयोग से वो पैसे वाला भी था, सीसीआई क्लब ही रिजर्व कर लिया उसने, कोई साधारण प्रेमपुरी आश्रम में मनाएगा, वो पैसे वाला होगा तो क्लब, हाँ, ये भाईदा सॉल क्या भव्य समारोह हो रहा था। आहा, उसी समय में एक प्रपोता आया और जोर से पटका, हैप्पी बर्थडे टू यू करते हुए दादा प्रदादा की सेंचुरी मना रहा था और जोर से पटाखा, तो उसकी निद्रा खुल गई। पटाखा तो क्या था, कहां से, उसके पटाखा से तो क्या निद्रा खुलती उसकी। अब जैसे खुल गए, एक मुहूर्त के अंतर उसने शताब्दी मना रहा है कि नहीं, बोलिए। वो स्वप्न दृष्टा एक मुहूर्त के अंदर शताब्दी मना रहा है, पोते प्रपोतों का अनुभव कर रहा है। आप भी कर रहे हो कि नहीं, बोलो है? आप लोग तो शताब्दी नहीं मना रहे हो, षष्ठी पूर्ति तो मना चुके होंगे। ये कोई लंबा समय मान रहे हो इसको, एक मुहूर्त के अंदर ही हो रहा है सब है। अनंत काल के गर्भ में ये तुम्हारा शताब्दी का क्या मूल्य है। अनादि अनंत काल जो है, काल प्रवाह में ये तुम्हारी शताब्दी का मूल्य क्या है। उस स्वप्न के एक मुहूर्त भी लंबा हो सकता है, ये इतना भी लंबा नहीं होगा उस काल गणना में, उसके गर्भ में। ये तो स्वप्न ही है। यथा स्वप्ने नृपो भूत्वा भुक्त्वा भोगान यथेप्सितान् चतुरंग बलोपेत शत्रुंजित्वा रथांग रणांगणे परात् पराजितो भूत्वा वनम प्राप्य तपश्चरन् मुहूर्तमात्रम् आत्मानं मन्यते कल्पजीविनम् तथैव जाग्रत्कालेऽपि दृष्टान्त। ये जैसा ये दृष्टांत वैसे ये जाग्रत काल भी। तथैव जाग्रत कालेपि मनोराज्यं करोत्यसौ। इस समय भी आप जो कुछ भी कर रहे हैं वे सब मनोराज्य होने के कारण स्वप्न है, क्योंकि व्यक्ति इसी कल्पना जगत में ही जी रहा है, यथार्थ जगत में नहीं जी रहा है। ये करूंगा तो ये होगा, ये करूंगा तो ये होगा, ऐसा होगा ऐसा होगा, ये कल्पना मनोराज्य है और ये मनोराज्य ही स्वप्न है। मनोराज्यं करोत्यसौ काल नध्योग योगेना। काल नदी, काल रूपी नदी के वेग में पड़ा हुआ यह जीव इस तरह प्रवाह में बहता जा रहा है। क्षीण मायूर न पश्यति। अपने 100 वर्ष के जो समय को वह देखता ही नहीं, कहता है कि मैं तो बहुत जी गया। ये 100 वर्ष के आयु काल नदी के सामने एक बूंद है, जैसे नदी के जल के सामने तुम्हारे लोटे का और गिलास का पानी का क्या महत्व है। इसी तरह काल नदी के सामने ये तुम्हारा 100 वर्ष का तो एक बूंद भी नहीं है, और उसको ही तुम बहुत मानकर कह रहे हो। तो ये काल प्रवाह न पश्यति, देखता नहीं है। आयुर नश्यति पश्यताम प्रतिदिनम याति चयम यौवनम, शंकराचार्य जी ने कहा है। आयुर नश्यति पश्यति प्रतिदिनम याति चयम यौवनम, प्रतिदिन अपनी यौवन घटता जा रहा है, आयु नष्ट होता जा रहा है। प्रत्यायांति गता पुनर्न जीवनम, कालो जगत भक्षक, जो निकल के चला गया है काल समय वो चला गया, वापस नहीं आने वाला है। जो जवानी चली गई है चली गई है, हिंदी में सही शब्द प्रयोग किया है जवानी, अब गुजराती में इसका अनुवाद करो तो सही होता है, गुजराती लोग जवानी, जाने वाले को ही क्या कहते हैं जवानी, गुजराती में सही शब्द कह रहे हैं जवानी, जाने वाला, जाना निश्चित है, रुकने वाला नहीं है, रोकने का कोई उपाय नहीं है, जवानी। प्रत्ययांति गतः पुनर्न दिवस कालो जगत भक्षक, लक्ष्मी स्तोय तरंग भंग चपला। जिस लक्ष्मी की हिसाब करते करते रात भर निद्रा नहीं आती, वो तो क्या है, चपला है, बिजली की तरह। बिजली बने, ये बिजली नहीं, मेघ गर्जना की बिजली की तरह है, विद्युत तरंग है। लक्ष्मी स्तोय तरंग भंग चपला विद्युत चलम जीवितम। तो जब ये अनुभव होता है तब वो प्रार्थना करता है ईश्वर से, तस्मात् माम शरणागतम शरणतः त्वम रक्ष रक्षा अधुना। तो ये जो दक्षिणामूर्ति का है, विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम निजांतर गतम, जैसे स्वप्न अपने ही अंदर है इसी तरह ये विश्व भी अपने ही अंदर है। पश्यन मायया बहिव, जैसे स्वप्न के कारण स्वप्न के अपने ही अंदर का दृश्य, स्वप्न दृश्य अपने से बाहर की तरह देखता है, इसी तरह माया के चलते, अनादि माया निद्रा के चलते अपने ही अंदर विद्यमान ये सारा प्रपंच वो बाहर की तरह देखता है, लेकिन बाहर नहीं है, सत्यता यह है, क्योंकि वो अनादि माया है असुप्तो। तो जीवो यदा प्रबुद्धते, तब जब जाता है, जब संत जगाते हैं, श्रुति जगाती है, ईश्वर जगाता है, योग साधना अभ्यास तुम्हें जगाता है, तब तुम्हें ये लगेगा कि अरे जिसको मैं इतने वर्षों से सत्य मानता रहा ये तो केवल प्रातिभाषिक मात्र है, प्रतीति मात्र है, और सत्य क्या है तो इसमें, तो बोले उसका साक्षी जो मैं हूं वो सत्य हूं। और आगे क्या कहेंगे कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम।